नई दिल्ली का एक पॉश इलाका। अक्टूबर की मीठी मीठी सर्द शाम में एक महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप विजिट के लिए जाती है। ये लेडी कुछ वक्त से अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थी। अपनी पिछली विजिट पे लेडी ने डॉक्टर को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। रात में नींद ढंग से ना आना, थकावट रहना, पसीना आना, चेहरे और माथे पे गर्माहट महसूस करना, और सबसे बड़ी परेशानी जो उनको महसूस हो रही थी वो थी कि 7 महीने से उनके पीरियड्स नहीं आए थे।
हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग।
ओ गुड इवनिंग मिसेस गुप्ता, प्लीज कम।
डॉक्टर, आपने जो मुझे दवाइयाँ दी थी उनसे मेरी नींद तो इम्प्रूव हुई है, पर मेरे पीरियड्स इस मंथ भी मिस हो गए।
एज एक्सपेक्टेड मिसेस गुप्ता, आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की रिपोर्ट आ गई है और किसी कारणवश आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ब्लड में काफ़ी कम हो गए हैं। मुझे डाउट है मिसेस गुप्ता कि आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही हैं। ये न्यूज़ मिसेस गुप्ता के लिए एक आश्चर्य वाली बात थी। आफ्टर ऑल उनकी एज अभी केवल 38 साल थी और अभी 3 साल पहले ही उनकी सेकेंड डिलीवरी हुई थी।
हेलो लिसनर्स, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट क्यूरेटिव क्लिनिक से। दोस्तों, 1% महिलाओं को मिसेस गुप्ता की तरह ही प्री मेच्योर मीनोपॉज हो जाता है। इंडिया में वैसे तो ऑन एन एवरेज 45 साल में अधिकतर फीमेल्स मीनोपॉज में पहुंचती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से अधिकतर फीमेल्स मीनोपॉज के सिम्टम से अनअवेयर रहती हैं। और इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम फीमेल हेल्थ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेनोपॉज को डिस्कस कर रहे हैं। आइए, इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने क्यूरेटिवो क्लिनिक पर। क्यूरेटिवो क्लिनिक पर डॉक्टर वेदांशी सावन, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फीमेल हेल्थ पे काम करती हैं, उनसे आज मैं मेनोपॉज डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स गो।
हेलो,
हाय। हेलो विवेक।
हाय वेदांशी, हाउ आर यू?
आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू?
आई एम डूइंग वेरी वेल। सो एज वी स्पोक कि वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनोपॉज, हम मेनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं और इंडियन ऑडियंस को इसके बारे में अवेयर करने वाले हैं।
डेफिनेटली।
सो यू आर रेडी फॉर इट?
आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।
ऑलराइट, सो लेट्स रोल ऑन एंड गेट स्टार्टेड विद इट।
वेदांशी, हर महिला के जीवन में उनकी हेल्थ से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट टाइम्स आते हैं और दोनों वक्त ही अधिकतर फीमेल्स इन चेंजेस से अनअवेयर रहती हैं। तो आप सबसे पहले आज की हमारी जो थीम है मेनोपॉज, उसके बारे में बताएं और आखिर ये होता क्यों है इसके बारे में भी हमें बताएं।
यस विवेक, सो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स अनअवेयर होती हैं इन चेंजेस के साथ। दे डू एक्सपीरियंस इट, तो उन्हें मालूम होता है कि कुछ चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन इनको समझने के लिए और इनको अच्छे से जानने के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम ये दो फेजेस जो आपने जिक्र किए हैं इनको डिफाइन करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? एक फीमेल जब प्यूबर्टी फीमेल की स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स, जब उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, तो हम उसे मेनार्की कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर फीमेल अब अपनी रिप्रोडक्टिव एज में आ गई हैं एंड शी इज़ रेडी टू कंसीव। ओके, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो इस ये हो गया आपने जो फेज़ वन, जैसे आपने कहा ये फर्स्ट फेज़ हो गया। उसी तरह से जब ये रिप्रोडक्टिव एज एंड होती है, यानी इसके बाद फीमेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, लेमैन टर्म्स में अगर हम कहें तो उसके बाद फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो इस फेज़ को हम मेनोपॉज कहते हैं। यूजुअली इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर 12 मंथ्स तक लगातार मेंस्ट्रुअल पीरियड का एब्सेंस है, अगर 12 महीने लगातार फीमेल को पीरियड्स नहीं होते हैं एट द डिफाइंड एज, मतलब अगर वो 40-45 ईयर्स की फीमेल है और उसको 12 महीने तक लगातार पीरियड्स का एब्सेंस है तो इसका मतलब वो मेनोपॉज हो चुकी है। तो अब हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर फीमेल को मेनोपॉज हो ही। तो देखिए, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। मेनोपॉज इज़ अ वेरी मच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक एजिंग प्रोसेस है। तो एज वी एज ये तय है कि मेनोपॉज होना है। तो फर्स्ट फैक्टर जो होता है इसका कॉज वो होता है एज। ठीक है, हर फीमेल, देखिए जब कोई भी फीमेल बॉर्न होती है तो उसके जितने भी एग्स होते हैं वो पैदा होने के साथ ही उनके ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, उन स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स कि कोई भी न्यू प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ स्पैन फीमेल्स में नहीं होता है एग्स का। जब फीमेल 40 ईयर्स से ऊपर होने लगती है, बाय दैट टाइम जब उतना एज हो चुका है तो वो सारे जो एग्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं एंड वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाते हैं। तो इवेंचुअली जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे में ओवरीज से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं। तो ये एज एक फैक्टर हुआ। दूसरा चीज़ हम कह सकते हैं कि प्री मेच्योर मेनोपॉज भी होता है, प्री टर्म मेनोपॉज होता है, जिसमें कि जिसको कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। इसमें पॉसिबल नोन कॉजेज जिसका कि हम कह सकते हैं, कई सारी स्टडीज़ में बताया गया कि PCOD हो गया आपका, थायराइड डिजीज़ हो गई, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर्स अगर हैं आपको, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे इसके पॉसिबल नोन कॉजेज हैं जो कोई एस्टेब्लिश्ड जिन नहीं हैं एज सच, लेकिन ये पॉसिबल नोन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हो सकते हैं। हम अगर डेमोग्राफिक डिफरेंसेस की बात करें तो एक जर्नल ऑफ मिडलाइफ हेल्थ में 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें कि पैन इंडिया एक सर्वे हुआ था। 23 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था फ्रॉम वेरियस रीजन्स इन पूरे इंडिया में से, एंड 2000 से ऊपर इन्होंने सर्वे किया था जिसमें जिसका मकसद ये था कि वो डिटरमाइन करें कि मेनोपॉज का एज क्या। इट वाज अ सर्वे, बेसिकली कोई इंटरवेंशनल नहीं था। तो उसमें से ये कंक्लूड होके आया है कि जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली 44 इयर्स की जो फीमेल्स थी उन 44 इयर्स से उनको सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन उनको बाय देवर 46 उनको मेनोपॉज हो चुका था। तो ये जो कि ये बहुत काफ़ी कम है हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट, वेस्टर्न कंट्रीज से, उनका मेनोपॉजल एज अगर हम देखें तो इट इज़ 50, 51, 52। लेकिन इंडिया में इट इज़ अब इसको डेमोग्राफिक डिफरेंस ही कहेंगे कि इंडिया में ऐसा है। क्या रीज़न है इसका, अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है। एंड तीसरा रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, मतलब ये एज रिलेटेड नहीं है, किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से अगर फीमेल्स को ओवरेक्टमी करानी पड़े, यानी कि ओवरीज का रिमूवल अगर करवाना पड़े, तो और उसके बाद भी मेनोपॉज हो सकता है, तो उसको हम सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं।
ऑलराइट, तो मेनोपॉज लेडीज की हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जो कि हर एक फीमेल जिनके पीरियड शुरू हुए हैं वो एक्सपीरियंस करेंगी। जैसे कि आपने हमें बताया कि 12 महीने तक जब ये पीरियड्स फीमेल में नहीं आते उस एज में, जबकि वो 40 से 50 साल की उम्र में हैं, तो वो एक मेनोपॉज का लक्षण होता है, या दैट्स हाउ यू डिफाइन द मेनोपॉज। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे साइंस बॉडी में या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं जिनसे मेनोपॉज को पहचाना जा सकता है, और क्या ये साइंस और सिम्टम्स एब्रप्टली आते हैं या ग्रेजुअली फीमेल इनको एक्सपीरियंस करती हैं?
वेल विवेक, अब्रप्टली तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि एक एजिंग प्रोसेस है, तो पहला सिम्टम जो हम विद टाइम नोटिस करते हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रेजेंटेशन। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफन लेट हैं पीरियड्स, देन कभी मिसिंग हो गए हैं, देन फ्लो में डिफरेंसेस है, कभी स्पॉटिंग हुई है, कभी हैवी फ्लो है, एंड देन अल्टीमेटली कंप्लीट सेसेशन हो जाता है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं पीरियड्स फॉर 12 मंथ्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो दैट विल बी डिफाइंड एज मेनोपॉज। उसके अलावा बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो है हॉट फ्लशेज या फ्लैशेज, सडन फीलिंग ऑफ ऐसे गर्मी सी, वार्म सी लगेगी, ऐसा लगता है आप ब्लश कर रहे हैं, कान गर्म हो गए हैं, चीक्स पे एकदम हीट सा फील होता है ना, यूजली अपर बॉडी में इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा इंसोमनिया है, नींद प्रॉपर नहीं आना है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, वेट गेन हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस काफ़ी रहती है, एंड जॉइंट एंड मसल स्टिफनेस भी हो सकती है। तो ये जनरल बॉडी के सिम्टम्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली जो चेंजेस हम कह सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आने लगती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या एरिया में जो हमारे सिम्टम्स हमें लगते हैं वो है, एक तो इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन लेवल्स हमारे काफ़ी कम हो गए हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, सो इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस के अलावा देन एट्रोफिक वेजाइनाइटिस है या एंड वेजाइनल ड्राइनेस, तो वेजाइनल वॉल की थिनिंग होने लगती है एंड उसकी इलास्टिसिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ ही जब वेजाइनल ड्राइनेस होती है तो जो इंटरकोर्स है वो काफ़ी पेनफुल होता है ना, यूरिनरी फ्रिक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, फीमेल पार्ट्स में आपको सोरनेस रह सकता है, एंड ये सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। लिबिडो हो जाता है, लैक ऑफ मीन्स आप यू डोंट फील लाइक हैविंग एन इंटरकोर्स ओनली। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है फीमेल्स को, तो ये सारी जो पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स फेस करती हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल जो हमने डिस्कस किए थे सिम्टम्स।
ऑलराइट, सो वेदांशी हमें ये बताएं कि वो फीमेल जो कि 40 से और 50 साल की उम्र के बीच में है और मे बी ये सिम्टम्स जो आपने मेनोपॉज के हमें बताए हैं उनको एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो उन फीमेल्स को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर ये सिम्टम्स एक्सेसिवली फीमेल्स महसूस करती हैं, उनकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होती है, तो किस किस तरह से इन सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है?
हाँ विवेक, बहुत अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि कब इन फीमेल्स को डॉक्टर से के पास विजिट करना चाहिए एंड ऑल्सो कि कौन से डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, कौन से हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करना चाहिए एंड करना भी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आप डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करें जब आपके बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, आपका डेली लिविंग में मतलब जैसे कि इंसोमनिया का सिम्टम है, आप इंसोमनिया, आपको नींद नहीं आ पा रही है, आपकी नींद पूरी नहीं है, उसकी वजह से आप दिन भर लथार्जिक हैं, आप बहुत ही स्लो फील करती हैं या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, आप किसी से पब्लिकली मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत यू आर अवॉइडिंग एवरीवन, तो धीरे धीरे क्या होता है आपको फीमेल्स अक्सर ये कहने लगती हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है विद एज। ऐसा नहीं होता है, वो अगर बहुत सारे जो बॉडीली सिम्टम्स हैं अगर ये मैनेज हो जाए तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें डिप्रेशन है। दूसरा, किस टाइप के फिजिशियन को या डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तो यूजुअली ये सिम्टम्स के लिए आप पहले, एक तो इस एज ग्रुप में है तो आप जैसे ईयरली हेल्थ चेक कराएं और गायनोकोलॉजिस्ट को अपने मिलें। गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो सही तरीके से आपको इवेल्युएट करेंगे, इफ़ रिक्वायर्ड दे विल डू सम ब्लड टेस्ट, आपके हार्मोन लेवल्स वो चेक करवा सकती हैं एंड अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि वो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एडवाइस कर सकती हैं। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो एस्ट्रोजन हो गया ये सब इनका सप्लीमेंट दिया जाता है यूजुअली एंड अलग अलग फॉर्म्स में होता है, टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स, जेल्स हो सकता है ना, टॉपिकल पैचेस हो सकते हैं, तो उस तरीके से वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे सही अप्रोच होती है होलिस्टिक, मतलब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, है ना, डाइट चेंजेस करें, एक्सरसाइजेस करें, माइंड को पीसफुल रखने के लिए इंटरवेंशंस करें। तो जैसे कि डाइट की हम बात करते हैं तो कैफीन, अल्कोहल, टी, ऐसी कोई भी चीज़ों का सेवन ना करें, है ना, ये आपको हॉट फ्लशेस जो होते हैं उसमें राहत मिलेगी इनसे एंड यूरिनरी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अपने डाइट में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करें एंड बहुत सारा पानी लें टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस, तो मॉडरेट एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, अगर बेस्ट है स्विमिंग करें, है ना, साइकिलिंग करें एंड योगा आप कर सकती हैं, योगा से बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स्ड होते हैं। स्विमिंग हर कोई नहीं भी करता है तो आई वुड सजेस्ट आप ब्रिस्क वॉकिंग तो कर ही सकते हैं, दिस इज़ द लीस्ट मिनिमम दैट यू कैन डू एंड हर कोई कर सकता है एंड कहीं पे भी कर सकता है ना। एंड बेसिकली एक्सरसाइजेस से आपको वेट गेन में भी फ़र्क पड़ेगा, आप वॉकिंग सुबह शाम कर रहे हैं तो वेट गेन में, जॉइंट मसल स्टिफनेस में होगा, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। एंड अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब क्विट करें, है ना। एंड उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है जो फीमेल पार्ट्स होते हैं उनके, यानी कि पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन, एक बार इस एज ग्रुप में अगर आप हैं, बेसिकली जब से आपने कंसीव किया है, जब से आपका बेबी हुआ है उसके बाद से ही आपको एटलीस्ट एक बार साल में जाके अपने फीमेल पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए एंड टू गेट योरसेल्फ असेस्ड कि मसल टोन जो पेल्विक फ्लोर की है वो एडिक्वेट है या नहीं, क्योंकि अगर मसल टोन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आपको प्रोलैप्स हो सकता है, आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ना। तो अगर आप पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन आपको प्रिस्क्राइब्ड है तो आप वो करें, वो डेफिनेटली करें, तो आपको इनकॉन्टिनेंस में, प्रोलैप्स को अवॉइड करने में, इन सब ये सब चीज़ों में एक रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे से गाइड और मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे वजाइनल ड्राइनेस है तो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है जो कि वजाइनल ड्राइनेस की वजह से, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स होता है, उसके लिए एक पेल्विक रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट आपको डायलेटर थेरेपीज देते हैं, तो वजाइनल डायलेटर थेरेपीज होती हैं, तो उससे भी आपको एटलीस्ट उसमें लुब्रिकेशन वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है और डायलेटर से आपको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट जो ये वाला सिम्टम है पेनफुल इंटरकोर्स, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
ऑलराइट विदांशी, एक क्विक एड ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर हम वापस आएंगे और मैं पूछूंगा आपसे मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस।
Curatevo Clinic is a 5-star rated physiotherapy clinic in Gurgaon. It is a 5-star rated clinic on Practo, Google and Facebook. Curatevo Clinic offers services in orthopedic, sports and neurological rehabilitation and has experts like physiotherapist Vivek Gaur and Vikas Lamba who help you overcome your back pain, knee pain, cervical spondylosis and other kind of pain disorders that may be draining the joy of your life. So if you are fed up with your pain pills or have gone through knee replacement or other surgeries or Parkinson or head injury patient at home, you can count on Curatevo Clinic for all kinds of rehabilitation services. For more inquiries or appointments, call us on 9891300916. And you can check our services, location, experts and our feedbacks on www.curatevoclinic.com. Curatevo Clinic, bringing excellence in rehabilitation medicine.
Welcome after the break. मैं अपने listeners को remind करा दूं कि मैं और Dr. Vedanshi आज menopause discuss कर रहे हैं. So Vedanshi, मेरा आपसे जो next question है, वो ये है कि मेनोपॉज होने के बाद क्या फीमेल्स कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस के लिए ससेप्टिबल हो जाती हैं या ये केवल एक मिथ है?
या विवेक, कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम काफ़ी सारी कंडीशंस को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, आपका वाइटमिन डिफिशेंसी हो गया, कैल्शियम डिफिशेंसी हो गई, इस तरह की चीज़ें लिस्ट काफ़ी सारी कर सकते हैं हम, लेकिन इनको हम डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। बट आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि फीमेल्स काफ़ी प्रोन हो जाती हैं इनको इन कंडीशंस के लिए, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से ट्रिवियल ट्रॉमा, हल्की सी टक्कर लग के भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है ना। मसल वीकनेस वगैरह है, आप फॉल कर सकती हैं मसल इम्बैलेंस की वजह से। हार्ट डिजीज़ हैं, अब जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, अब बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हुई हैं जिसमें कि हार्ट डिजीज़ कॉमन बताई गई हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, लेकिन कोई फिर ऐसा डेफिनेटिव स्टडी नहीं हुई है जिससे ये कंक्लूड हो जाए कि हाँ मेनोपॉजल विमेन को हार्ट डिजीज़ होंगी ही। तो ये एक एज कॉन्फ्लिक्टेड है, एक एज रिलेटेड भी इसको मानते हैं, स्टडीज़ चल रही हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इसमें स्टडीज़ कर रहे हैं। उसी तरह से विटामिन डी डिफिशेंसी है, कैल्शियम डिफिशेंसी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन है जो एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हम उसको, मैं इसको एक एज अ कॉम्प्लिकेशन ही मानती हूँ, और वो है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। बिकॉज ऑफ द बॉडीली सिम्टम्स जो हमें आ रहे हैं और उसको क्योंकि फीमेल समझ नहीं पा रही हैं एट दैट एज, तो उसको वो धीरे धीरे उसके बारे में सोच, सिर्फ किसी को कंसल्ट तो करती नहीं है, तो उसको सोच सोच के ही उनको घबराहट सी होने लगती है। वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगी, शुगर चेक करवाएंगी, एक्स वाई जेड चीज़ें करेंगी, दवाइयाँ खाएंगी, लेकिन ये सिम्टम्स उनको कोई राहत नहीं मिलती है, तो उन्हें घबराहट होने लग जाती है कि कुछ हो रहा है उन्हें। दे डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो उनके पास ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे ये कॉमनली आपने सुना होगा, इस एज में लेडीज़ कहती हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब चीज़ों से हो रहा है. इफ़ दे एक्नॉलेज कि अब इनकी मेनोपॉजल एज है और वो अपने उन सिम्टम्स को समझें तो उसको उस हिसाब से टैकल करें, उसको उस हिसाब से मैनेज करें, तो उनको ये घबराहट नेचुरली नहीं होगी. इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, जैसे हमने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, उन केसेस में वो डेफिनेटली काउंसलिंग लें, है ना, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, ज़रूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से भी वो मिल सकती हैं. तो ये ही एक कॉम्प्लिकेशन, डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन जो मैं कंसिडर करती हूँ वो है. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा, क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है इसलिए इसको एम्ब्रेस करें, इट्स अ एजिंग प्रोसेस, दैट्स ऑल.
एक्सेलेंट विदांशी, जैसे कि मेनोपॉज में आपने इससे पहले वाले पार्ट में हमें ये बता दिया कि रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेस का रोल है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि वो फिजियोथेरेपिस्ट जो कि आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी और आपका क्या मैसेज उनके लिए है?
हाँ विवेक, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर ही रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन का एंड एक्सरसाइजेस का काफ़ी महत्व है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, नॉट ओनली फॉर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस बट कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी उनको अचीव होता है. तो एक स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, जो कि एक लिटरेचर रिव्यू था, जिसमें बताया गया है कि एक्सरसाइजेस से क्या इम्प्रूवमेंट है. उसमें काफ़ी जो उसका कंक्लूजन निकल के आया था वो था कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉग्निटिव फंक्शन में पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में. तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल तक ही सीमित नहीं है, कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी है, है ना. एंड जो फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैब एक्सपर्ट्स हमें सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा इस एज ग्रुप की तरफ भी ध्यान दें, है ना. जेरियाट्रिक पेशेंट्स काफ़ी देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, सो अगर पहले से ही पेशेंट्स को अपने गाइड करना स्टार्ट करें तो आप भले ही विमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट या पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट ना हो, बट डेफिनेटली आप अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि क्या रोल प्ले कर सकता है एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, है ना. अपने पेशेंट्स को काउंसिल करें, गाइड करें कि कब उन्हें किस कंडीशन के लिए कौन से एक्सपर्ट को मिलना है, वेदर कौन सी कंडीशंस गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किए जाने चाहिए, कौन से स्पेशलिस्ट को, अगर पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड है तो वो पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट के पास उन्हें भेजें, है ना. एंड अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो उसके लिए वो मनोचिकित्सक के पास रेफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह से आप अपने पेशेंट्स को, एंड नॉट ओनली पेशेंट्स बट उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं रिलेटिव्स, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं.
एक्सेलेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विदांशी हमारे साथ आज की डिस्कशन में जुड़ने के लिए. सो अगर मैं आज के टॉपिक मेनोपॉज को अपनी ऑडियंस के लिए समराइज करना चाहूँ तो मैं कुछ पॉइंट्स में अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा. सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और हर एक फीमेल जिनके पीरियड शुरू हुए हैं उनको मेनोपॉज के वक्त वो पीरियड समाप्त हो जाते हैं. दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में अधिकतर महिलाएं 45 साल की उम्र के आसपास मेनोपॉज में पहुंचती हैं. थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मेनोपॉज कई महिलाओं के लिए कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट भी हो सकता है. इस दौरान अधिकतर महिलाएं कम नींद आना, चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस, रात को पसीना आना, वजाइनल ड्राइनेस जैसी परेशानियां महसूस कर सकती हैं. चौथा पॉइंट, मेनोपॉज के अधिकतर सिम्टम्स को डाइट, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, पर जिन फीमेल्स को ये सिम्टम्स ज़्यादा परेशान करते हैं उनको दवाइयों और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT की आवश्यकता पड़ सकती है, और इसलिए 40 की उम्र के बाद महिलाओं को साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट ज़रूर कर लेनी चाहिए. पाँचवा पॉइंट, मेनोपॉज के बाद कुछ बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी और ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवेस्कुलर इलनेसेस, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ना, पर ये एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता कि ये रिस्क मेनोपॉज के कारण बढ़ते हैं या फिर बढ़ती उम्र के कारण ये रिस्क बढ़ जाते हैं. छठवां और लास्ट पॉइंट, पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट्स महिलाओं में होने वाली पेल्विक प्रॉब्लम जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस, पेनफुल इंटरकोर्स, पेशाब ना रुकना यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूटराइन और वजाइनल प्रोलैप्स जैसी गंभीर समस्याओं में काफ़ी मदद कर सकते हैं. और आपको 40 से और 60 साल की उम्र में जो महिलाएं हैं
उनको हर साल दो साल में एक बार पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर वेदांशी सावन क्यूरेटिवो क्लिनिक पर एक पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट हैं, और अगर आपको पेल्विक फ्लोर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप हमारे क्लिनिक के रिसेप्शन नंबर 9891300916 पर हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर वेदांशी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक मेनोपॉज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें ज़रूर कमेंट करें। आप हमसे किस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, या अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई इंक्वायरी पोस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे रिसेप्शन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आज की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो और हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।